آسٹریلیا میں جنوبی ایشیا خاص طور پر برصغیر پاک و ہند سے درامد شدہ کھانے پینے کی اشیاء انڈین اور پاکستانی کمیونٹی میں یکساں مقبول ہیں اور کھلے عام فروخت ہوتی ہیں، لیکن حال ہی میں ایس بی ایس ریڈیو کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سب کچھ اچھا نہیں ہے، کیونکہ آسٹریلیا میں کھلے عام بکنے والی بہت سی اشیاء کی پیکیجنگ میں تبدیلی کی جاتی ہے یا ان کی ایکسپائری ڈیٹ میں رد و بدل ہوتا ہے، اور بہت سی اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ایس بی ایس ریڈیو کی پنجابی ٹیم نے اس انویسٹیگیشن پر اہم کام کیا ہے، اور ہمارے ساتھ پنجابی پروگرام کی ایگزیکٹو پروڈیوسر منپریت سنگھ موجود ہیں، ان سے اس رپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ منپریت، اس رپورٹ میں پاکستان اور بھارت سے آسٹریلیا آنے والی کھانے پینے کی کئی چیزوں اور معروف برانڈز کے نام شامل ہیں، اس انویسٹیگیشن میں کیا خاص بات سامنے آئی ہے؟
یہ انویسٹیگیشن ریحانہ آپ کو بتاؤں بہت مہینے لگے، اور سب سے بڑی باتیں جو سامنے آئی، جو آپ نے بولا نا کہ رد و بدل ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹس کا، وہ تو چلو ہمیں نظر آ جاتا ہے، اگر ہم نے کوئی سامان خریدا کہ فنگس لگی ہے اس کو ہم پھینک دیں گے، ہم اس کو کھائیں گے نہیں۔ ہمارا منتب یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا زہر تو نہیں جو چھپا ہوا ہے، جو آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ تو ہم نے لیبوریٹری ٹیسٹنگ کرائی بہت سارے کھانوں کی جو انڈیا، پاکستان اور ایشیائی ملکوں سے یہاں آسٹریلیا میں آتے ہیں، اور لیبوریٹری ٹیسٹنگ سے یہ صاف پتا چلا صرف 18 چیزوں کو ہم نے ٹیسٹ کروایا، ان میں سے دو تو ایسے ہیں جو بالکل فیل ہوتے ہیں آسٹریلین فوڈ اسٹینڈرڈ کے حساب سے، وہ دو ہیں ایم ڈی ایچ توا فرائی مسالہ اور ہے کوہی نور باسمتی رائس۔ ان دونوں میں کچھ ایسی انسیکٹیسائڈز اور پیسٹیسائڈز اور فنگیسائڈز ہیں جو یہاں پہ آسٹریلیا میں الاؤڈ نہیں ہیں۔
When I checked the current maximum residue limits in Australian regulations, the levels that you showed me in that data were slightly above that, so they would not be compliant. I doubt very much whether there would be a health effect associated with those levels because they're only marginally higher than the MRL. But they would not be compliant, put it that way.
اس کے علاوہ ہمیں سپاری ملی، دیکھیے ساؤتھ ایشیا میں عام لوگ سپاری بھی کھاتے ہیں، وہ بالکل بینڈ ہے، اس کا جو امپورٹ ہے اس پوری پروہیبیشن ہے۔ پان مسالہ الگ ہے، اس کی بات ہم آگے چل کے کریں گے کیونکہ وہ ہماری الگ انویسٹیگیشن آگے آئے گی۔ یہ سپاری کے صرف یہ اریکا سیڈ نٹ، بیٹل نٹ ہوتا ہے جس کو جیسے چباتے ہیں، بیٹل نٹ کی بات ہم کر رہے ہیں، اس پہ سخت پابندی ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں آسٹریلیا کے جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ واٹر ریسورسز DAWR، وہ لوگ ایک فیلنگ فوڈ رپورٹ نشر کرتے ہیں جس میں پتا چلتا ہے کہ کون سی کنسائنمنٹ، امپورٹڈ کنسائنمنٹ ریجیکٹ ہوئی ہیں۔ اس میں ایک خاص اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ اس میں بیٹل نٹ تھا، سپاری تھی، اٹ از پروہیبیٹڈ۔ سو یہ تو باتیں ہوگی جو بینڈ پروڈکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ چار ایسے ہمیں پروڈکٹس ملے جو ہمارے ماہر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، چاہے آسٹریلیا کے فوڈ اسٹینڈرڈس نے ان کو کچھ حد تک پاس کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیل ہوتے ہیں، پر ان پہ بہت بڑا سوالیہ نشان اس کر کے ہے کیونکہ یا تو ان میں لیڈ ہے، آرسینک ہے، اور یہ بچوں کے انفنٹ سیریل ہے، ایک کمپلان ڈرنک کر کے آتی ہے، بہت عام یوز کی جاتی ہے دودھ میں یا پانی میں ڈال کے پی جاتی ہے، وہ ہے، اس میں لیڈ، آرسینک، بہت چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ویر کا گھی، آپ کو جان کے حیرانی ہوگی، گھی ہے، اس میں DDT کا ٹریس ہمیں ملا۔ اب یہ جو ٹریس ملا ہے آسٹریلین اسٹینڈرڈس کے مطابق اٹ کمپلائز، پر ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو DDT ہے جی، چار چار جنریشن تک باڈی کے اندر رہتی ہے۔
The level of those chemicals is way too high. Even you can feel or you can smell, you can taste. This is my personal experience as well. So this is quite an alarming situation for most of the products which is coming from India with the pesticide and insecticide levels or the residues.
اور DDT پہ آسٹریلیا میں کب سے 200 سال سے بین بھی لگا ہوا ہے، پھر بھی یہ گھی کے اندر ہمیں DDT کا ٹریس ملا۔ بہرحال جیسے میں نے آپ کو بولا آسٹریلین اسٹینڈرڈ سے کمپلائی کرتا ہے کہنے کو، پر یہ ہم لسنرز پہ چھوڑتے ہیں، وہ اس کو یوز کرنا چاہتے نہیں چاہتے کیونکہ اس میں ٹریس ہے DDT کا۔ ایک پاکستان سے بنا چاول تھا، باسمتی چاول، کلورپیرفاس کر کے ایک انسیکٹیسائڈ ہے جو हूबहू डीडीटी जैसी ऑर्गेनोफॉस्फेटिक पेस्टिसाइड है वो भी हमें मिली। ये तो बहुत बड़ी सुपरमार्केट से, यानी कि साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर से खरीदी गई है। चाहे ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड से ये कम्प्लाई करता है, पर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसको यहाँ नहीं होना चाहिए।
अच्छा, यहाँ दो पार्टीज और इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, एक तो आपके एक्सपर्ट्स हैं यानी माहिरीन, एक ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, और इसके अलावा बड़े बड़े ब्रांड नेम हैं जिनके ऊपर जाहिर है आंच आती है जब उनका नाम आता है कि वो ऐसी मसनूआत यहाँ बिक रही है उनके नाम से। जब आपने उनसे रब्ता किया जो ब्रांड हैं जिनकी ये अशिया जो बना के बेच रहे हैं, वहाँ से क्या जवाब मिला आपको?
देखिए, सबसे बड़ा ब्रांड तो है नेस्ले। नेस्ले से बातचीत अभी भी चल रही है, क्योंकि हमने उनके जो जो उन्होंने हमें बताया वो हमने हूबहू अपनी वेबसाइट पे हर जगह बताया है। उनका था वो बेबी सीरियल, उसमें लेड निकला है 0.031 मिलीग्राम्स, ठीक है जी। और ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली बेबी सीरियल के लिए स्टैंडर्ड बना ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें इन्फेंट फॉर्मूला जो बच्चे पीते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड है, और उसमें कहते हैं कि 0.02 मिलीग्राम होना चाहिए। सो उससे तो ये आगे है, पर नेस्ले कहता है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लियर स्टैंडर्ड नहीं है फॉर इन्फेंट सीरियल, कहते हम सीरियल का स्टैंडर्ड यूज करेंगे जो कोई भी बड़े बूढ़े जवान सब यूज करते हैं, उसमें 0.2 10 गुना ज्यादा अलाउड है लेड। सो ये बातचीत चल रही है, नेस्ले कह रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट ठीक है, तो उनकी बात हमने सारों के सामने रखी कि आप खुद डिसाइड कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, नेस्ले ये कह रहा है, एंड दिस इज व्हाट इट इज। इसी तरह हाइंस है, हाइंस ने कॉम्प्लान ड्रिंक बनाई है, उनसे बातचीत चल रही है। एमडीएच मसाले बहुत बहुत पॉपुलर है, जो क्रिकेट चलती है वो देर अ वेरी बिग स्पॉन्सर ऑल्सो। एमडीएच वालों ने तो कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया में हमने 2-3 बार टेलीफोन से मैंने उनसे बात भी की, हमने उनको ये बताया कि जी आपके जो तवा फ्राई मसाला है उसमें 1 नहीं 2 नहीं 4 इंसेक्टिसाइड मिले हैं, 4 में से 2 जो हैं ऐसे लेवल्स पे हैं जो बिल्कुल अलाउड नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कोई हमें जवाब नहीं मिला। तो हमने बात तो सबसे की है, और सबसे बड़ी बात आप जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज की कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज फेडरल अथॉरिटी है जो इम्पोर्टेशन को ओवरसी करती है, वो हो गया एक फेडरल डिपार्टमेंट। फिर है जी फूड स्टैंडर्ड्स ANZ, FSANZ, वो इसको लिखते हैं फूड स्टैंडर्ड की ये ऑस्ट्रेलिया का फूड स्टैंडर्ड है। फिर आते हैं लोकल काउंसिल या स्टेट गवर्नमेंट जो इसको अप्लाई करते हैं। अब मुश्किल ये बनती है, हम फूड स्टैंडर्ड से पूछते हैं कि जी बताइए, यू नो मिसाल के तौर पे कि ये सीरियल कंप्लाई करता है कि नहीं। फूड स्टैंडर्ड्स वाले हमें कहते हैं हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते जी, हम तो सिर्फ फूड कोड लिखते हैं। हम जब फेडरल अथॉरिटी से पूछते हैं जी आप बताइए कंप्लाई करता है कि नहीं, कहते जी आप स्टेट अथॉरिटी से पूछो। सबसे बड़ा फिक्र ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आप खुद ये कह रहा है, ऐसे जो खाने जो हमने टेस्ट कराए चावल ये सब जो चीजें हैं बिस्किट वगैरह, इसको सर्वेलेंस फूड या लो रिस्क माना जाता है, इसमें से सिर्फ 5% खाना जो इम्पोर्ट होता है उस पर टेस्ट होता है, बाकी 95% जो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में उस पर कोई टेस्ट होता ही नहीं।
About 5% of the food products that come into Australia are actually are tested for pesticides by the quarantine service. That leaves a pretty big margin of stuff that can come in that no one's really sure. That's 95% of whatever's coming through the country isn't tested at all.
जब नेस्ले का वो मैगी नूडल्स का स्कैम हुआ था लास्ट ईयर, वो लेड उसमें बहुत ज्यादा लेड पाई गई थी, पूरी इंडिया में से उठा लिया गया था वो, और बहुत कंट्रीज ने उसको बैन कर लिया था, पर वही इंडिया वाले बने मैगी और उस पे खास लिखा है फॉर सेल इन इंडिया एंड नेपाल एंड भूटान ओनली, वो सारी मैगी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बिक रही है। फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है कि दोज प्रोडक्ट्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द होम कंट्री, नॉट अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स। इसको हम पैरेलल इम्पोर्ट कहते हैं कि जिस जो एक्सपोर्ट के लिए नहीं बना फिर भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है, उसको गलत नहीं कहते, पर उनको मुश्किल ये है कि कई पैरेलल इम्पोर्ट्स में इंग्रेडिएंट्स सही से नहीं बताए गए होते, न्यूट्रिशनल पैनल सही से नहीं होता, सबसे बड़ी बात एलर्जी की जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें नट्स हैं, इसमें मिल्क सॉलिड्स हैं, इसमें ये बातें नहीं लिखी होती। और रेहान, इससे ऊपर जो आपने बताए लेबल्स के तबादले, वो तो इतने ज्यादा हो रहे हैं। हमें तो एक प्रोडक्ट ऐसा मिला कि उस पे 3 साल पुरानी एक्सपायरी डेट थी और उसको कवर किया हुआ था। बहुत बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हमें मिले जिनकी एक्सपायरी डेट जानबूझ के बढ़ाई गई। एक तो हमें आटा का पैकेज ऐसा मिला जिस पे लिखा था प्रोडक्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और उसके ऊपर एक काली सी लाइन, बहुत थिक ब्लैक लाइन थी, हमने वो लाइन रगड़ी तो उस पे लिखा था प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। अब क्या कहें?
आपने जो तहकीकात की है और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई है, बड़ी मेहनत तलब आप लोगों ने ये काम किया। कौन सा ऐसा काम था जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था इस फीचर की तैयारी में?
मेरे ख्याल सबसे पहले तो रिसर्च थी रेहान, क्योंकि हमने सबसे पहला रिसर्च पॉइंट हमारा था यूनाइटेड स्टेट्स में कितने अपने साउथ एशियन या खासकर इंडियन इम्पोर्ट्स रिजेक्ट हुए, और 15 महीने का मैंने रिकॉर्ड चेक किया, मुझे कितने ही दिन लगे मैं आपको बता नहीं सकती। और इसमें मैंने 3000 ऐसे आम प्रोडक्ट्स पाए जो रिजेक्ट हुए थे जस्ट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और मुझे लगा ये तो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट्स खरीदे, उसके बाद उनकी एनालिसिस कराई, लैब टेस्टिंग कराई, उसमें महीना डेढ़ महीना लगा। उसके बाद हमें फिर माहिर चाहिए थे जो हमें करेक्टली इंटरप्रेट करके बताएं, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते ना। तो फूड एक्सपर्ट से इंटरप्रिटेशन कराई, उसको समझा कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद जो जवाबदेही लेनी थी फेडरल अथॉरिटी से, स्टेट अथॉरिटीज से, या फिर जो ब्रांड्स थे उनसे, या जो शॉप ओनर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनसे, उसमें बहुत हमारी मेहनत लगी।
क्योंकि इससे बहुत सी कम्युनिटीज मुतासिर होती हैं, सार्फीन मुतासिर होते हैं, जो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं वो मुतासिर होते हैं। तो किसी की तरफ से आपके ऊपर इस तरह के, जैसे हम लोगों को सुनने को मिलता है कि जी आप अपने मुल्क की चीजों की बदनामी कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, इस तरह के ठप्पे तो नहीं लगना शुरू हुए?
नहीं नहीं, बात ये है कि ये तो सेहत के लिए हमने, दिस इज अबाउट वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। रेहान, हमारे बच्चे यहाँ बड़े हो रहे हैं, हम क्यों अपने बच्चों को वो खाना दें जो हमें पता है कि पेस्टिसाइड से लेडन है, या सबसे बड़ी बात अब देखिए लेड, आर्सेनिक, कॉपर, क्रोमियम, ये सब चीजें कितनी चीजों में मिली हैं, कितने खानों, जितने भी इम्पोर्टेड खाने थे सब में थी। अब आप माने एक चावल हमने ऑस्ट्रेलियन चेक किया था, उसमें कुछ भी नहीं था, पर जो हमने इम्पोर्टेड खाने किए उसमें इतना कुछ है। वी आर नॉट टारगेटिंग एनी कम्युनिटी, एनी रिटेलर्स, किसी को नहीं। और हम तो बल्कि अथॉरिटीज को कह रहे हैं दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, आप दूसरी कम्युनिटीज का देखिए, बाकी कम्युनिटीज पे भी ये लागू की जाए। क्योंकि देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं बेहतर जिंदगी के लिए और ये सोच के आते हैं यहाँ सब साफ सुथरा होगा, अगर यहाँ दुकानों में कुछ बिक रहा है तो ठीक होगा, पर अगर इस बात की गारंटी नहीं है तो ये तो सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा ना जी, हमारी सेहत के लिए। तो हम किसी को टारगेट नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। रेहान, सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा पहले तो शमशेर का करूँ, शमशेर कैंट, वो मेरे साथी प्रोड्यूसर थे, हमने एक साल तकरीबन लगाया इस इन्वेस्टिगेशन पे, और इसके अलावा बहुत लोगों ने हमारी मदद की, तो सबके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और आपका भी।
पाकिस्तान और हिंदुस्तान से दरामदशुदा खाने पीने की अशिया जो आम तौर पे पाकिस्तानी और इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स पर बिकती हैं, उनके मेयार के बारे में SBS रेडियो की फूड सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है। इसी मौजू पर आप बातचीत सुन रहे थे।